एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा AI की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही असाधारण जिंदगी की गहराइयों में उतरने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने कला, हिंसा और हाँ, अपनी कहानी को एक अविश्वसनीय तरीके से गढ़ा। हम बात कर रहे हैं बेनवेनुटो सेलिनी की आत्मकथा की। पूरा नाम तो काफी लंबा है, वीटा दी बेनवेनुटो दी माइस्ट्रो जोवानी सेलिनी फ्योरेंटिनो।
हाँ, जिसे हम आमतौर पर ऑटोबायोग्राफी के नाम से ही जानते हैं।
बिल्कुल, और यही किताब आज हमारे विश्लेषण का स्रोत है। यह हमें 15वीं सदी के इटली में ले जाती है। सेलिनी, जिनका समय था 1500 से 1571,
ये सिर्फ एक कलाकार नहीं थे।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
वो तो स्वर्णकार थे, मूर्तिकार, सैनिक, संगीतकार, यहाँ तक कि लेखक भी।
मतलब हाई रेनेसा और मैनरिज्म के दौर का एक जीता जागता तूफान थे वो।
सही कहा, एक तूफान। और हमारा मकसद आज यही है कि इस जटिल शख्सियत और उनकी विस्फोटक कहानी से कुछ जरूरी सबक और नजरिया निकालें।
हाँ, और ये कहानी आज भी क्यों जरूरी है? मतलब सदियां बीत गईं।
देखिए, ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये सिर्फ एक कलाकार की जीवनी नहीं है, बल्कि ये उस पुनर्जागरण काल के अनदेखे पहलू को दिखाती है।
अच्छा,
कौन सा पहलू?
वो उथल पुथल भरा सच जो अक्सर कला के भव्यता के पीछे छिप जाता है। सेलिनी का जीवन, वो भी उनके अपने शब्दों में, वो एक जबरदस्त अहंकार, एक अटूट जज्बा और हाँ, उस दौर की जो क्रूर सच्चाई थी ना, उसका एक जीता जागता दस्तावेज है।
सोचिए जरा, एक आदमी जो दावा करे कि उसने अपने दुश्मनों को सड़क पर मार डाला, जेल में उसने फरिश्तों को देखा, रोम की हिफाजत की और दुनिया की कुछ सबसे नायाब, सबसे बेहतरीन कलाकृतियां भी बनाई।
और फिर ये सब खुद लेख भी डाला।
हाँ, यही तो, ये सिर्फ इतिहास नहीं लगता, ये तो किसी किसी महाकाव्य जैसा लगता है ना। हाँ, और शायद यही बात इसे खास बनाती है। ये उस दौर के किसी भी दूसरे दस्तावेज से ज्यादा खरी है, ज्यादा बेबाक है, ज्यादा निजी है। इसने असल में उस रोमांटिक कलाकार की छवि को गढ़ा है। मतलब वो कलाकार जिसमें असाधारण प्रतिभा हो, जो जुनून से भरा हो और जो दुनिया से हमेशा एक टकराव में रहे।
अच्छा,
हाँ, सेलिनी के नजरिए से हम पोप के दरबारों को देखते हैं, युद्ध की भयानक अराजकता को देखते हैं और एक मूर्तिकार की कार्यशाला की जो मेहनत है, जो जादू है, उसे भी महसूस कर सकते हैं।
चलिए तो फिर इस तूफानी जिंदगी के सफर पर निकलते हैं। सेलिनी के शुरुआती साल कैसे थे? क्या चीज उन्हें इस रास्ते पर लाई? क्या वो बचपन से ही इतने विद्रोही थे?
उनका जन्म हुआ 1500 में फ्लोरेंस में। पिता थे जियोवानी सेलिनी, जो मेडिची परिवार के लिए संगीतकार थे, और वो चाहते थे कि बेनवेन्यूटो भी संगीतकार ही बने।
अच्छा, पिता की मर्जी थी।
हाँ, लेकिन बेनवेन्यूटो का मन लगता था धातु के काम में, डिजाइन में, तो ये पहला टकराव था, पिता की उम्मीदें एक तरफ और बेटे की अपनी धुन दूसरी तरफ। उन्हें जबरदस्ती संगीत सिखाया जाता था, जिसे वो बिल्कुल नापसंद करते थे। शायद यहीं से उनके उस विद्रोही स्वभाव की नींव पड़ी।
यानी कला की दुनिया में उनका आना ही एक तरह के विद्रोह से हुआ। और वो आग में सैलमेंडर देखने वाला किस्सा, वो बड़ा मशहूर है, वो भी तो उनके बचपन का ही है।
हाँ हाँ, वो किस्सा भी है। वो उनके पिता के, कह सकते हैं, थोड़े अंधविश्वासी स्वभाव और उस दौर की सोच को दिखाता है।
अच्छा, कैसे?
पिता ने आग में कुछ अजीब सा देखा, बेटे को थप्पड़ मारा और कहा, ये नज़ारा याद रखना। अब सेलिनी ने शायद इसे अपने खास होने का एक और संकेत मान लिया होगा।
दिलचस्प है।
उनका शुरुआती जीवन इसी तनाव में गुजरा, एक तरफ परिवार का दबाव, दूसरी तरफ अपनी कलात्मक महत्वाकांक्षा और उनका गुस्सैल स्वभाव, वो भी जल्दी ही दिखने लगा। झगड़ों के कारण उन्हें कई बार फ्लोरेंस छोड़ना पड़ा। उनकी असली ट्रेनिंग, असली शिक्षा हुई सुनारों की कार्यशालाओं में, वहां उनका हुनर तेजी से निखरा।
तो मतलब औपचारिक शिक्षा से ज्यादा गलियों ने और वर्कशॉप की भट्टी ने उन्हें गढ़ा। और ये दिलचस्प है कि उनका हुनर और उनका वो लड़ापापन दोनों साथ साथ पनप रहे थे।
बिल्कुल सही कहा। झगड़े के बाद फ्लोरेंस से भागे तो सियना गए, बोलोना, पीसा। यहां उन्होंने न सिर्फ अपना हुनर मांझा, बल्कि एक खतरनाक लड़ाकू होने की शोहरत भी कमाई।
रोम पहुंचना उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। वो शहर कला के संरक्षकों का गढ़ था, और सेलिनी अपनी फ्लोरेंटाइन ट्रेनिंग और बेपना आत्मविश्वास के साथ वहां की उस बहुत प्रतिस्पर्धी दुनिया में उतरे
और वहां काम मिला।
हाँ, कार्डिनलों और बिशपों के लिए काम किया और जल्दी ही मशहूर भी हो गए।
तो लगता है रोम उनके लिए एक यूनिवर्सिटी जैसा बन गया था, जहां उन्होंने पुरानी कला सीखी और बड़े कलाकारों से मुकाबला किया।
बिल्कुल, और यहीं उनकी वो छवि भी पुख्ता हुई होगी कि सुबह तो नाजुक गुलदान बना रहे हैं और शाम को तलवार चला रहे हैं। ये विरोधाभास ही शायद उन्हें परिभाषित करता है।
निश्चित रूप से, और उनका करियर असल में चमका पोप क्लेमेंट सप्तम के संरक्षण में, लेकिन एक घटना ने उन्हें उनकी ही नज़र में एक किरवंदी बना दिया। वो थी 1527 में रोम पर हमला, जिसे सैक ऑफ रोम कहते हैं।
हाँ, जब सम्राट चार्ल्स पंचम की बागी सेना शहर में घुस आई थी।
बिल्कुल, तब सेलिनी ने हथियार उठा लिए।
हाँ, वो अपनी किताब में लिखते भी हैं कि कैसे उन्होंने कास्टेल सेंट एंजेलो की रक्षा की, जहाँ पोप छुपे हुए थे। वो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि दुश्मन सेनापति को मारने वाली तोप उन्होंने ही दागी थी।
हाँ, ये दावा वो करते हैं।
अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, पर इसने उन्हें पोप का चहेता जरूर बना दिया होगा।
बेशक, सच हो या ना हो, इस घटना ने उनकी उस विर्चू वाली छवि को मजबूत किया।
विर्चू? ये क्या है?
मतलब कला और युद्ध दोनों में महारत। उनकी शोहरत बढ़ी, पर हाँ, दुश्मन भी बढ़े। उनकी जिंदगी फिर कमीशंस, झगड़ों और साजिशों का एक बवंडर बन गई।
अच्छा,
जैसे
अरे
उन्होंने दिन दहाड़े एक प्रतिद्वंदी सुनार को मार डाला, फिर भागे, माफी मिली, फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के दरबार गए। वहां उन्होंने मशहूर सेलियरा जैसी अद्भुत चीजें बनाई।
वो नमकदानी?
हाँ, वो तो बहुत मशहूर है, लेकिन उनका अहंकार और दरबारी राजनीति से तालमेल ना बिठा पाना वो वहां भी आड़े आया होगा।
बिल्कुल।
झगड़ों के बाद इटली लौटे और फिर फ्लोरेंस में ड्यूक कॉसिमो प्रथम दे मेडिसी के लिए पर्सियस की मूर्ति बनाने का वो काम शुरू हुआ, जो एक महाकाव्य ही बन गया।
हाँ, पर्सियस की ढलाई, ये तो उनके जीवन का चरम बिंदु थी।
बिल्कुल, जैसा वो खुद बताते हैं, ये सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं था, ये किस्मत से जंग थी। उनकी प्रतिभा और उनके दर्शन का निचोड़ था ये। पर्सियस की सफलता ने उन्हें अमर तो कर दिया, पर शांति, शांति फिर भी नहीं मिली उन्हें। नहीं कहा। बाद के साल ड्यूक कोसिमो से पैसों को लेकर झगड़ों में गुजरे।
अच्छा।
और उनके प्रतिद्वंदी, खासकर मूर्तिकार बाचो बांदिनेली, जिनसे वो सख्त नफरत करते थे, उनकी साजिशें चलती रहीं। उन पे कई इल्जाम लगे, वो नजरबंद भी रहे, और इसी दौर में लगभग 1558 से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखवानी शुरू की।
अच्छा, उस मुश्किल दौर में।
हाँ, ये उनका आखिरी महान काम था। धातु और पत्थर के बाद अब वो अपनी विरासत को शब्दों से गढ़ रहे थे। ये किताब एक तरह से खुद का बचाव है, अपनी एक साहसिक कहानी है जिसमें वो खुद हीरो हैं, और हाँ, कला पर एक व्यावहारिक नजर भी है इसमें।
मतलब हिसाब किताब भी चुकता किया है।
हाँ, वो पुराने हिसाब चुकाते हैं, अपनी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अपने गुनाहों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। 1571 में उनकी मौत हुई, लेकिन वो अपने पीछे कलाकृतियों के साथ साथ अपनी कहानी का ये असाधारण संस्करण छोड़ गए।
तो अगर हम सेलिनी के कामों और झगड़ों के पीछे झांकें, तो एक खास तरह का दर्शन या जीवन दृष्टि नजर आती है।
ये क्या थी?
क्या चीज उन्हें चलाती थी?
जी,
क्या चीज उन्हें मोटिवेट करती थी?
देखिए, उनका नजरिया पुनर्जागरण मानवतावाद, मध्ययुगीन अंधविश्वास और उनके अपने जबरदस्त अहंकार का एक अजीब सा मिश्रण था। इसके केंद्र में थी विर्तु, वर्चू की धारणा। सेलिनी के लिए विर्तु सिर्फ नैतिकता नहीं थी, ये थी स्किल, साहस, उत्कृष्टता और एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का संगम।
अच्छा।
उनका मानना था कि विर्तु वाला इंसान दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है, चाहे वो स्टूडियो में हो या जंग के मैदान में। वो मानते थे कि ये गुण ईश्वर का दिया तोहफा है और उनमें ये कूट कूट कर भरा है।
यानी वो खुद को आम इंसानों से ऊपर मानते थे,
जैसे ईश्वर ने उन्हें चुना हो।
हाँ, बिल्कुल, यही उनके दर्शन का दूसरा पहलू आता है, अपने दैवीय पक्ष पर गहरा यकीन। उन्हें हर तरफ शगुन दिखते थे, शगुन।
हाँ, जेल में उन्हें फरिश्तों के दर्शन हुए, ईश्वर की सीधी मौजूदगी महसूस हुई, ऐसा वो कहते हैं। उन्हें लगता था कि ईश्वर ने उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए बचाया है, और इसी वजह से उनका मानना था कि महान कलाकार इस दैवीय प्रतिभा के कारण कानून से ऊपर होते हैं।
कानून से ऊपर? ये तो बड़ी बात है।
हाँ, गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा भी था, मेरे जैसे लोग जो अपने फन में बेजोड़ हैं, कानून मानने को मजबूर नहीं है। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये उनका एक गहरा विश्वास था।
और उनकी प्रेरणा क्या थी? पैसा, शोहरत या कुछ और?
मुख्य प्रेरणा थी प्रसिद्धि और गौरव की अंतहीन तलाश। वो चाहते थे कि उनका नाम सदियों तक गूंजे, जैसे माइकल एंजेलो का गूंजता है। हर काम उनके लिए अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक मौका था।
और पैसा?
पैसा जरूरी था, पर ज्यादातर इसलिए कि वो उनके मूल्य और उनके संरक्षक के सम्मान का प्रतीक था। दूसरी बड़ी प्रेरणा थी सम्मान और न्याय की तीव्र भावना, जो अक्सर हिंसक हो जाती थी।
अच्छा।
हाँ, उनके खिलाफ कोई भी अपमान एक ऐसा घाव था जिसका बदला लेना जरूरी था, और अक्सर तलवार से।
बाप रे, तो मुश्किलों का सामना वो कैसे करते थे? पीछे हटते थे या भिड़ जाते थे?
सेलिनी, पीछे हटने वाले नहीं थे वो। मुश्किलों को वो झटका नहीं बल्कि अपने वर्तु की परीक्षा मानते थे। उनका तरीका था आक्रामकता, तकनीकी जुगाड़ और गहरा विश्वास। इंसानी दुश्मन से निपटने के लिए धमकी या हिंसा, तकनीकी चुनौती आई जैसे पर्सियस की ढलाई में, तो अपने ज्ञान और नाटकीय अंदाज से सुधार किया। और जब हालात काबू से बाहर होते थे जैसे प्लेग या जेल, तो प्रार्थना और इस यकीन का सहारा कि ईश्वर अपने चुने हुए कलाकार को नहीं छोड़ेगा।
कमाल का लचीलापन था उनमें।
हाँ, बहुत। हर मुश्किल से बच निकलने को वो अपनी खासियत का सबूत मानते थे। उनकी आत्मकथा इसी इच्छा शक्ति से बाधाओं पर जीत हासिल करने की कहानी है।
उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन क्या कुछ ऐसे खास मोड़ थे जिन्होंने उनकी कहानी और उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया?
हाँ, मेरे ख्याल से तीन खास पड़ाव नजर आते हैं। पहला, 1527 में रोम पर हमला।
वो सैक ऑफ रोम वाला?
हाँ, वही। उसने उन्हें कलाकार से योद्धा बना दिया। कास्टेल सांतेंजेलो की रक्षा में उनकी भूमिका, चाहे उन्होंने उसे बढ़ा चढ़ाकर ही बताया हो, उसने उनकी आत्म छवि को गढ़ा। वो खुद को एक ऐसे नायक के तौर पर देखने लगे जो सभ्यता बना भी सकता है और बचा भी सकता है।
और पोप का विश्वास भी जीता उन्होंने।
बिल्कुल, जिसने बाद में उनकी रक्षा भी की। इसने साबित किया कि उनका विर्तु सिर्फ स्टूडियो तक ही सीमित नहीं था।
दूसरा मोड़ शायद उनकी कैद का वक्त रहा होगा। वो अनुभव तो उन्हें तोड़ भी सकता था।
हाँ बिल्कुल, कास्टेल सांतेंजेलो में कैद 1538-1539 उनका दूसरा अहम मोड़ था। उन पर पोप के गहने चुराने का झूठा इल्जाम लगा था।
उसी किले में कैद हुए जिसकी कभी रक्षा की थी।
हाँ, विडंबना देखिए, भयानक हालात झेले, भागने की कोशिश में पैर तोड़ा, अकेले कैद रहे। लेकिन इसी अंधेरे में उन्हें उनके अनुसार तीव्र धार्मिक अनुभव हुए। उन्हें यकीन हो गया कि वो खास है जिन्हें ईश्वर खुद बचा रहा है।
तो उस अनुभव ने उन्हें तोड़ा नहीं?
नहीं, बल्कि उनके खास होने के विश्वास को और मजबूत कर दिया। उनकी पीड़ा उनकी निजी पौराणिक कथा का हिस्सा बन गई।
और तीसरा, यकीनन पर्सियस की ढलाई। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो तो उनके पूरे जीवन का प्रतीक बन गई।
सही कहा आपने, पर्सियस विद द हेड ऑफ मेडूसा की ढलाई 1545-54 तीसरा और शायद सबसे नाटकीय मोड़ था। ड्यूक कॉसिमो का ये कमीशन एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती थी। सेलिनी ने ढलाई के वक्त आई मुश्किलों का बहुत रोमांचक व्यौरा दिया है। तूफान आया, भट्टी में आग लग गई, धातु जमने लगी।
हाँ, और फिर उनका वो नाटकीय फैसला।
हाँ, अपने घर के सारे प्यूटर के बर्तन करीब 200 पिघलाकर कांसे में मिला देना ताकि ढलाई बच सके। ये कमाल था।
और जब मूर्ति प्याजा डेला सिग्नोरिया में स्थापित हुई।
हाँ, तो वो सिर्फ कला की जीत नहीं थी, वो उनके दुश्मनों पर जीत थी, शक करने वाले संरक्षकों पर जीत थी, और खुद किस्मत पर जीत थी। इसने साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति और प्रतिभा मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं।
सेलिनी की इस असाधारण और हाँ कई बार विवादास्पद जिंदगी से आज हम क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसमें कुछ गहरे मानवीय सबक भी छिपे हैं?
नहीं, इसमें कई सबक हैं। पहला तो है आत्मविश्वास की ताकत। सेलिनी का जीवन दिखाता है कि यकीन भले ही वो हद से ज्यादा क्यों ना हो, आपको वो करने की हिम्मत दे सकता है जो नामुमकिन सा लगे। उनका अपनी प्रतिभा पर अटूट विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा।
और हार न मानने का जज्बा, उनकी दृढ़ता भी कमाल की थी।
बिल्कुल, तकनीकी मुश्किल हो, राजनीतिक साजिश हो या जेल की दीवारें, उन्होंने हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाला। ये दिखाता है कि टिके रहना भी अपने आप में एक प्रतिभा है।
और शायद सबसे दिलचस्प सबक है अपनी कहानी खुद लिखने का महत्व, है ना?
हाँ बिल्कुल, सेलिनी का आखिरी मास्टरपीस उनकी आत्मकथा ही थी। वो जानते थे कि कर्म तो भुला दिए जाते हैं, पर एक अच्छी कहानी अमर हो जाती है। उन्होंने तय किया कि दुनिया उन्हें वैसा ही याद रखे जैसा वो चाहते थे, न कि जैसा दूसरे उन्हें देखते थे। ये अपनी विरासत खुद गढ़ने का एक शक्तिशाली उदाहरण है।
लेकिन ये भी सच है कि उनकी कहानी हमें एक असहज सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या महान प्रतिभा और नैतिक अच्छाई हमेशा साथ चलते हैं?
ये बड़ा सवाल है।
सेलिनी का जीवन दिखाता है कि असाधारण रचनात्मकता गहरे दोषों वाले इंसानों में भी हो सकती है। उनकी हिंसा, उनका अहंकार, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है।
और अगर बौद्धिक स्तर पर देखें तो उनकी कहानी हमें पुनर्जागरण की असलियत दिखाती है। वो सिर्फ कला और सौंदर्य का शांत युग नहीं था।
नहीं था।
नहीं, वो क्रूर भी था, अराजक था और अंधविश्वासी भी था। सेलिनी का जीवन उस दौर की कला, शक्ति, राजनीति और हिंसा के जटिल घालमेल को उजागर करता है।
और आज के संदर्भ में देखें तो सेलिनी एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग के पुरखे लगते हैं। क्यों?
हाँ, कह सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी छवि गढ़ी, अपनी कहानी सुनाई, ये आज के सेल्फ मेड मिथक बनाने वालों के लिए एक केस स्टडी जैसा है।
हाँ, उनकी आत्मकथा शायद इतिहास का पहला अनफिल्टर्ड अबाउट मी पेज है।
हाँ हाँ, बिल्कुल।
तो अगर इस पूरी चर्चा से तीन मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
चलिए सोचते हैं। पहली शायद होगी भावनात्मक अंतर्दृष्टि,
यानी
कलाकार का अहंकार और उसकी जरूरतें। सेलिनी की कहानी रचनात्मक ईगो का एक गहरा अध्ययन है। मान्यता की वो तीव्र इच्छा, नज़रअंदाज किए जाने पर गुस्सा और उपलब्धि पर असीम खुशी। पर्सियस की ढलाई का पूरा नाटक इसी भावना को तो दिखाता है।
हाँ, ये उस एहसास से जुड़ता है जब कोई अपने काम में अपनी पूरी आत्मा डाल देता है और चाहता है कि दुनिया उसे पहचाने।
बिल्कुल। दूसरी होगी बौद्धिक अंतर्दृष्टि, पुनर्जागरण की जटिल सच्चाई। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ सुंदर कलाकृतियों का दौर नहीं था, ये शक्ति, राजनीति, हिंसा और अंधविश्वास का एक क्रूर मिश्रण था। सेलिनी की आत्मकथा हमें उस युग के आदर्शवादी पर्दे के पीछे झांकने का मौका देती है। और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, वो ये कि आप अपनी कहानी के अंतिम लेखक हैं।
अच्छा।
सेलिनी ने समझा कि याददाश्त गढ़ी जा सकती है और एक शक्तिशाली कहानी हकीकत को शक्ल दे सकती है। उन्होंने अपनी कहानी पर नियंत्रण किया। ये एक बड़ा सबक है। अपनी कहानी दूसरों को बताने देने के बजाय अपनी विरासत खुद परिभाषित करना।
ये वाकई सोचने वाली बात है, अपनी कहानी पर नियंत्रण रखना।
हाँ,
सेलिनी ने अपनी कहानी घड़ी, अपनी शर्तों पर अमर हुए। लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी कहानी, अपना ब्रांड बना रहा है, क्या हम सब अनजाने में अपने अपने छोटे सेलिनी नहीं बन रहे?
सोचने वाली बात है।
एक नई किताब और नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।